Hello everyone. So we have started a series on Dam Silly YouTube channel where we have been taking live questions from students regarding their actual problems on how to study and actual questions that they want to ask. In that series of Ask the Mentor, today we have with us Dr. Vijesh, Vijesh Tigare. Vijesh is from Aurangabad. Vijesh, can you put on your camera so that everybody can meet you today? And Vijesh is very famous on Instagram, and he's from Dhule, actually, ACPM Medical College Dhule, and he's very famous on Instagram as Doctor by Heart. And it's my pleasure to be able to answer his questions live today. Vijesh, पहले
जी
अपने बारे में
सर,
थोड़ा सा बताएं, कहाँ पे
थैंक यू
पढ़ रहे हैं?
सो मच सर, इतने अच्छे डिस्क्रिप्शन के लिए थैंक यू सो मच। आई एम ए इंटर्न फ्रॉम 2016 बैच। राइट नाउ इंटर्नशिप खत्म होते आ रहा है एंड आई एम वेरी पॉजिटिव व्हेन आई डू थिंग्स लाइक आई आल्सो मेक वीडियोस एंड आई मेक पोस्ट, आई स्टडी, आई डू माय इंटर्नशिप, सो आई डू ऑल माय थिंग्स पैशनेटली एंड पूरी बैच में से सब देखते हैं कि बंदा कितना पॉजिटिवली पैशनेटली करता है। तो सर दैट इज माय थिंग, जो भी चीज करनी है अच्छी करनी है, जान लगा के करनी है, परफेक्ट हो नहीं हो ये नहीं पता लेकिन करनी है, तो
बहुत बढ़िया,
दैट इज इट। यस सर,
बहुत बढ़िया। आई थिंक वही स्पिरिट है, जो करना है, जीते हारे वो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी जान लगा के करना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो विजेश, आज के लिए क्या क्वेश्चन है आपका?
यस सर। सर क्वेश्चन ये है कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो यूजी वाले बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ अस हुआर इंटर्न्स, इंटर्न्स की पढ़ाई कैसे करे सर? व्हेन आई वाज इन माय स्टार्ट ऑफ द इंटर्नशिप पढ़ाई बहुत अच्छा जा रहा था, स्मूथली जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे इंटर्नशिप आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे मेडिसिन सर्जरी जैसे बड़ी पोस्टिंग्स आई, दैट टाइम वी फेल्ट डिफिकल्टीज इन स्टडिंग एंड इन मैनेजिंग टाइम, सो व्हाट विल बी योर एडवाइस फॉर अस इंटर्न्स?
बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं पिछले 22 साल से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से मैंने देखा ये क्वेश्चन बार बार आता है कि अगर हमारा जिंदगी में हम जो पैरेलल कर रहे हैं, चाहे हम इंटर्नशिप कर रहे हैं या कोई हम जॉब कर रहे हैं, जहाँ हम बिजी हैं, तो उसके पैरेलल हम कैसे पढ़ें। तो पहली चीज जो है ना, मैं यहाँ एक माइंडसेट रीसेट करना चाहता हूँ, एक माइंडसेट रिट्यून करना चाहता हूँ कि सबसे पहले ना, एक हम अपने मन से इस बात को हटाना है कि एक दिन ऐसा होगा कि सब कुछ परफेक्ट होगा, मैं खाली भी होऊंगा, मेरे पास टाइम भी होगा, घर पे भी सब ठीक चल रहा होगा, तब पढ़ाई करूंगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिथ है जो मैं बहुत सारे बच्चों के मन में देखता हूँ। कहते हैं कि सर अभी इंटर्नशिप में छोड़ता हूँ, अगले साल ना बहुत ही बढ़िया होगा, तब पढ़ लूंगा। अगले साल कुछ घर पे परेशानी आ जाती है, कभी किसी की बहन की शादी आ जाती है, कभी कुछ काम आ जाता है, जिंदगी तो चलेगी ना, तो फिर फंस जाता है। फिर वो कहता है उसके अगले साल करूंगा। परफेक्ट आता नहीं है, मतलब बहुत ही लकी होंगे कई बार हम, अगर हम बोले बहुत ही अच्छी किस्मत होती है तो जिंदगी में एक बड़ा ही खुला समय मिल जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन असली जिंदगी में सपने भी हैं, लेकिन बाकी जिंदगी में और भी कुछ चल रहा है। तो इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पहले इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम बिजी होने के बाद भी सक्सेस पा सकते हैं, कुछ थोड़ा मल्टीटास्क करना पड़ेगा। इसके अंदर जो मेरा एक सोल्यूशन है, जो मैं बहुत सारे इंटर्न्स को बताया मैंने, वो ये कि जो पोस्टिंग आपकी बिजी है, विजेश जैसे आपकी सबसे
सर
बिजी पोस्टिंग है,
सर्जरी
उसमें भी
सेकेंडरी,
जब आप वापस आए, चाहे भले ही आपको आधा घंटा मिले, 1 घंटा मिले, फिर भी कुछ तो पढ़ेंगे। माने अगर मैं मेरे सबसे खराब दिन में भी कुछ आगे बढ़ सकता हूं तो मैं जीत जाऊंगा। मतलब समझ पा रहे हैं कि प्रोग्रेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं बच्चे, क्या गलती कहां होती है इंटर्नशिप में, कहते हैं सर्जरी पोस्टिंग है तो ये पूरी पोस्टिंग नहीं पढ़ूंगा, फिर गड़बड़ हो जाती है। अगर मैं आधा घंटा, 1 घंटा, जितना समय मिल रहा है रोज निकालता जाऊं तो बात बन जाएगी। ठीक है, ये एक बात हुई। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक पोस्टिंग का भी इस्तेमाल करो। एक हमारी पूरी मेडिकल साइंस में एक, कई लोगों ने, मैं उसको बोलूंगा कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कारण, उन्होंने मेडिकल साइंस को जो स्कूल के समय से एक चला आ रहा है, स्कूल के समय से ना टीचर आपको बताते थे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना समझना है, बायोलॉजी याद करना है, और इस तरह की थॉट प्रोसेस बच्चे के अंदर ना डीप सीटेड हो गई कि यहाँ याद करना है समझना नहीं है। जबकि अगर वो समझे तो आप देखो, जब आप इंटर्नशिप में काम कर रहे हैं तो बहुत कुछ एमसीक्यू आपके आसपास है,
यस
विजेश
सर,
आपने देखा होगा एमसीक्यू आसपास है, कोई कोई मरीज है जहां पे उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई प्रोसीजर के बारे में पूछा जाएगा, तो क्या मैं जहां मैं हूं वहां पे एक क्वेश्चनिंग माइंड रख सकता हूं? अगर कोई नर्स इंजेक्शन दे रही है तो आप वो वायल उठा के देख नहीं सकते कि कैसे रिकंस्टिट्यूट कर रही है उसे, आप देखोगे कॉमन प्रोसीजर, कॉमन चीजें, कॉमन मरीज क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। तो यहां मतलब तीन निष्कर्ष मैंने निकाले। पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिंदगी में डेडिकेटेड टाइम सपनों के लिए नहीं मिलता है, जिंदगी भी चल रही होती है और सपने भी चल रहे होते हैं, तो हमें मैनेज करना ही पड़ेगा। दूसरा, खराब दिन पे भी आउटपुट निकलनी चाहिए। ऐसा ना हो ना कि आप सोचो कि जो परफेक्ट दिन होंगे उन्हीं दिन पढ़ूंगा। मैं इतने सारे बच्चे जानता हूं जो कहते हैं सर सिर्फ पीएसएम की पोस्टिंग में जाके पढ़ूंगा। तो भाई सर्जरी भी
जी
पोस्टिंग में भी पढ़ना है, ऑब्स गायनी पोस्टिंग में भी पढ़ना है, हर पोस्टिंग में बात आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है। और नंबर तीन है, जहां
बिल्कुल
आप हैं, जहां पे भी आप हैं, माइंडफुली आपको होना पड़ेगा। यदि आप वार्ड में हैं तो आप उस समय माइंडफुली देखिए क्या हो रहा है। सर्जरी में है तो इंस्ट्रूमेंट देखो, कल क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर वो कितना फायदा मिलेगा ना। मैं जैसे आपको एग्जांपल बताऊंगा, जब मैं मेरी एनेस्थीजिया पोस्टिंग थी मेरी इंटर्नशिप में, तो हम ज्यादातर जो मेरे दूसरे बैचमेट होते थे एनेस्थीजिया पोस्टिंग में, उनको छुट्टी मिल जाती थी, मुझे नहीं मिली। भाई मेरी जो पोस्टिंग थी उन्होंने मुझे छुट्टी नहीं दी, उन्होंने कहा नहीं भाई आना पड़ेगा इंटर्न को। लेकिन मैंने वहां गया तो मैंने कहा मुझे दिखाओ, मैंने कहा भैया अगर मुझे बुला रहे हो मैं काम करूंगा तो मुझे दिखाओ कि यहाँ क्या हो रहा है। और इतने सारे एमसीक्यू एनेस्थीसिया के मेरे सामने थे जो मैं याद कर रहा था कि ये कौन सी किस चीज का पिन इंडेक्स क्या होता है, क्या कलर है, क्या ट्यूब है, सब मेरे सामने थी। उन्होंने मुझे काम करते हुए दिखा दिया, मेरे लिए विजुअल मेमोरी बन गई। किसी भी चीज को हम विजुअलाइज करते हैं वो हमेशा के लिए याद रहता है। तो बिजी
बिल्कुल
इंटर्नशिप को मैं, अच्छा एक चीज और, हर साल आप देखो पिछले 22 साल में आप डैम्स डेली के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, बहुत सारे फर्स्ट अटेम्प्टर आपको ऐसे दिखेंगे जिन्होंने रैंक वन निकाली होगी एग्जाम के अंदर। इसका मतलब इंटर्नशिप के साथ निकाल तो सकते थे, है ना? पॉसिबिलिटी है, इसको एक्सेप्ट करो, मेहनत करो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। बार बार मन में आएगा गिव अप कर देते हैं, बार बार मन में आएगा गिव अप कर देते हैं, अगले साल कर लेंगे। लेकिन क्या गारंटी है कि अगले साल हम इतने खाली होंगे और कोई और समस्या नहीं आ जाएगी? तो ये जैसे कई बच्चों के साथ मैंने देखा कि उन्होंने बोला अगले साल कर लेंगे, अगले साल कोविड आ गया, उनकी कोविड पोस्टिंग लग गई, वो अगला साल भी खराब हो गया। तो हर चीज प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती जिंदगी में। आपको सपनों को करंट में, आज में जो सच है वो आज है, उसी में लेके चलना है, उसको टालिए मत। दैट इज दी सीक्रेट ऑफ हाई अचीवमेंट।
राइट सर, मतलब मेरा भी यही चल रहा था। मैं जब मेरा आईसीयू पोस्टिंग था तब मैं आगे में मेरे पार्टनर के साथ में डिस्कस करता था। फॉर एग्जांपल सीकेडी का पेशेंट है तो हम इटियोलॉजी से लेके ट्रीटमेंट तक हर चीज डिस्कस कर रहे थे, लेकिन एक टाइम बाद ऐसा आ गया, वो आ गया कि अब बस नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था। मतलब मेडिसिन पोस्टिंग अभी खत्म होते आ रहा है, जो जुनून था, जो पैशन था कि भाई इस पेशेंट को क्या क्या हो सकता है, निकालो क्वेश्चन आंसर, लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। मैं भी यही सोचते आ रहा कि अभी पीएसएम पोस्टिंग आ रहा है, 1 तारीख से पीएसएम में पढ़े चालू करेंगे, लेकिन गिव अप नहीं करा अब तक।
नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ
ये
कुछ कुछ आगे बढ़ना जरूरी है हर दिन।
सर
मतलब कोई भी दिन पूरा खराब मत करो। ये मतलब एक हमारा एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हमें ये पता होना चाहिए। जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यार ये पूरा हफ्ता बिल्कुल जीरो कर दिया, वो मत करो। कुछ तो कर ले, एक टेस्ट कर ले, ग्रैंड टेस्ट कर ले, थोड़े नोट्स पढ़ ले, कुछ कर ले तो आगे बढ़ती रहेगी प्रोग्रेस। अगर हम कर रहे होते हैं तो कुछ दिन कम होगी प्रोग्रेस, कुछ दिन ज्यादा होगी, लेकिन एवरेज में आप जीत रहे होगे। और जो हम एवरेज निकालते हैं ना, कोई दिन 12 घंटे पढ़ लिया, कोई दिन 1 घंटे पढ़ा, लेकिन एवरेज में आप जीत जाओगे फिर।
एम प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, ये आपका पढ़ा था, मैंने आर्टिकल बुक में पढ़ा
जी
था जी सर। और एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। सर फर्स्ट ईयर से लेके पढ़ के आए हैं, बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, बहुत सारे कंसेप्ट भूले हैं, जो कंसेप्ट गलत पढ़े थे उनको बराबर करा है, लेकिन सर इन दिस मेडिकल फील्ड एमबीबीएस में इतने सारे कंसेप्ट हैं, तो हर चीज को याद कैसे रखे, समझे कैसे और यूज कैसे करे, क्योंकि भूल जाता है सर एक टाइम बाद। फार्मा तो
बिल्कुल
भूल गया, मोस्ट ऑफ द फार्मा भूल गया अब
बिल्कुल ठीक है।
तक
यहाँ ना मेरे तीन चार फॉर्मूले हैं जो मैं अपने, मैं कई बार मैंने मतलब पूरी जिंदगी इस्तेमाल की है, मैंने कई बच्चों को भी बताया, मैं आपके पास भी रखता हूँ। पहली चीज जो है ना, मैं याद करने में विश्वास ही नहीं रखता हूँ, मैं समझने में विश्वास रखता हूँ। और ये मैं आई थिंक मतलब अगर आप मेरी क्लास में हो या आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो, आप देखो मैं ये हर बार बोलता हूँ कि ये ना एक पता नहीं
जी सर।
क्या एक दुनिया ने हमारे मेडिकल एजुकेशन को निमोनिक बना दिया। कई लोगों ने कहा कि मेडिकल एजुकेशन का मतलब है निमोनिक याद करना, और बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो गए। कई लोग ऐसे हाथ करके याद कर रहे हैं, मतलब कंफ्यूजन फैला रखी है। अब मेमोरी जो है ना, मेमोरी, आप मेमोरी किसी भी डिवाइस की लिमिटेड होती है। आपके फोन में भी आपने देखा होगा मेमोरी खत्म हो जाती है, कंप्यूटर की मेमोरी खत्म हो जाती है, तो कितनी चीजें डालोगे? अब स्कूल में जब आप होते हैं, स्कूल में हमारे पास चार किताबें थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जॉलॉजी, और वो पतली पतली किताबें थी, तो कई बच्चे उसको याद कर लेते थे, तो उनको लग रहा है कि वही कॉन्सेप्ट हम एमबीबीएस में भी लगा देंगे। यहाँ 19 बुक्स हैं और बड़ा सब्जेक्ट है, इस सारा नहीं याद कर पाओगे। ये तो याददाश्त से नहीं जीत सकते गेम, ये समझने से जीत पाएंगे। ये पहला क्रिटिकल बात है कि मुझे आई हैव टू
ओके
रीड टू अंडरस्टैंड, नॉट टू मेमोराइज। अब व्हाट इज
यस
अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली, इसको कैसे बनाना है? पहला मेरा उसके अंदर जो मैं आपको देना चाहता हूं मंत्र, वो है विजुअलाइजेशन। मैंने क्या किया, मैं चाहता हूं आप ये मेरे मेरे एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं। मैं जब मैं फर्स्ट ईयर में था, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर बच्चे की बात की, मैं जब अनेटमी पढ़ रहा था तो मैं पैरेलल उसको डाइसेक्शन हॉल में देखता था। मेरे को लगता है कई बच्चे इस बात को जरूर समझ रहे हैं, कई बच्चों का बेचारों का मिस भी हो गया वो कोविड के चलते ये बात। लेकिन
बिल्कुल
जब मैं एमबीबीएस में था तो मैं डाइसेक्शन हॉल में उस चीज को देखता था और बहुत ही एंथुजियास्टिक होता था कि मैं डायसेक्ट खुद करूंगा। मतलब कई बच्चे होते थे हम तो नहीं करेंगे, लेकिन मतलब मैं करूंगा। उससे क्या होता था कि जो चीज है, मतलब सोचो एक बात आप वर्ड याद कर रहे हो कि ये नर्व इसके एंटीरियर जा रही है कि पोस्टीरियर जा रही है कि लैटरल जा रही है, एक आप उसको देख रहे हो, तो जब आप देख रहे हो विजुअलाइज कर पा रहे हो तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में बैठ जाती है। तो आप अगर सोचो जब आप सर्जरी कर रहे होगे कल को, जब आप बड़े सर्जन बन जाओगे तो सब कुछ याददाश्त से थोड़ी कर रहे हो, आपकी वो एक जैसे आप कॉलेज में गए, हॉस्टल में गए, लाइब्रेरी में गए, याद थोड़ी कर रहे हो, वो हमारे सब कॉन्शियस में वो रस्ते, वो ओरिएंटेशन हमारे दिमाग में आ जाती है। यहाँ पे एक और किताब का भी रोल है, मैं उसको लाना चाहता हूँ, नेटर्स एटलस। अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते समय एनाटॉमी की नेटर्स एटलस को साथ में तस्वीरों को देखोगे फिर पढ़ोगे तो समझने में आसानी हो रही है। और अगर आप याद कर रहे हो ये नर्व लेटरल जा रही है, लेटरल जा रही है, लेटरल जा रही है, याद ही नहीं होगा कभी, लेकिन समझ आएगा तो बात बनेगी। दूसरी चीज जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, एक तो विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट होगी, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बोलता हूँ लर्न बाय टीचिंग, जो मैं देखता हूँ कई बच्चे करते हैं। आई थिंक विजेश भी मैं देखता हूँ कई बार इसको फॉलो कर रहा होता है, लर्न बाय टीचिंग, जो फेनमैन टेक्निक है, जो प्रोफेसर फेनमैन ने सिखाई कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है तो उसको किसी और को पढ़ा दो, अगर कोई नहीं मिल रहा तो अपने आप को पढ़ा दो, लेकिन सिंपल भाषा में पढ़ाओ। अगर आप एक मुश्किल कॉन्सेप्ट को सरल भाषा में कन्वर्ट कर लेते हो तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। अब जैसे कि कोई भी मुश्किल बात मैं किसी को समझा रहा हूं, ठीक है, तो बीच में क्या होगा, कोई बात ऐसी होगी जो मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। मैं क्यों नहीं समझा पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे नहीं आती होगी, तो अब मैं वापस नोट्स में जाऊंगा, मैं वापस नोट्स में जाऊंगा, उसको दोबारा देखूंगा, फिर समझाऊंगा, तो मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। और तीसरी है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या है, एक मैं देख रहा हूं इंडिया के अंदर एक एक इस तरह का ट्रेंड है इस समय पे कि बहुत सारे लोग बच्चों को कह रहे हैं कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग बच्चों को कह रहे हैं कि आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप खाली खाली पैसिव कंज्यूम कीजिए कॉन्सेप्ट, जो कि बिल्कुल गलत है। जब भी हम कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए और पढ़ाई के लिए, उसमें फर्क है। एंटरटेनमेंट मतलब मैं भाई आपने कॉमेडी शो देखा, शार्क टैंक देख रहे हैं आप यूट्यूब पे, आपने कुछ लिखना थोड़ी है, कल कोई पूछेगा थोड़ी उसके बारे में आपसे। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको उस समय लिखना है, आपने अपने ब्रेन के मल्टीपल एरियाज को एक्टिवेट करना है, विजुअल, ऑडिटरी, मोटर एरिया, जितना आप मल्टीपल एरियाज को एंगेज करके साथ में पढ़ते हैं उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ती है। इंटरैक्ट करना है टीचर के पूछे जाने पर, आपने आंसर करना है, जितना आप डिस्कशंस के अंदर जितना आप एक्टिवली इंटरैक्ट कर रहे होंगे उतना आप सीखेंगे। अगर
यस
आप
सर
पैसे बैठ के सुन रहे हैं, जैसे कि भाई कथा हो रही है, जैसे पुराने जमाने में कहते थे भाई वो भगवान की कथा हो रही है बच्चे सुन रहे हैं, तो उससे भगवान नहीं मिलता, क्योंकि आप पैसे कम उसके पैसे कंज्यूमर हैं, एक्टिव
हाँ
कंज्यूमर बनना है आपने।
यस
नहीं, डू यू एग्री कि नहीं विजेश?
सर अभी जैसे आपने अभी डीबीटी चल रहा था है ना, नीट जो बोल्ड डेट था जब डीबीटी चल रहा था तब ना बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के देखते थे सर। मैं मेरी आदत कैसे डीबीटी में सर या मैम जो पूछते थे तो मैं बोल देता था, मुझे ध्यान ही नहीं कि यार मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ, तो मैं खास बाहर निकलता था सो दैट वो इंटरेक्टिव बना रहे। और सर सच में जो वो 2-3 साल में जितने भी नोट्स हाथ से लिखे हैं, जितना भी पहाड़ बनाया है नोट्स का अब तक, तो ये लिखी हुई नोट्स कंसाइज रहे वो पढ़ने में लाइवली लगती है, जिंदा नोट्स लगती है सर।
उसका कारण है
तो
क्योंकि जैसे हम लिखते हैं, जैसे अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको मैं लिखूंगा और आप लिखोगे वो अलग अलग होगी, उसकी तरीका अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हम जो चीज कंज्यूम कर रहे हैं, कंटेंट हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, उन सब चीजों से हम सीख रहे हैं और हम लिख रहे हैं, हम हमारी अंडरस्टैंडिंग को कागज पे लेके आ रहे हैं। ये कागज क्योंकि आपने खुद लिखा है तो ये कागज आपसे बात करेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब मैं पीएमटी के समय में ना, मेरा जब टॉप 5 में रैंक आया पीएमटी के समय में, बहुत सारे बच्चे मेरे स्कूल के आए जो जूनियर थे मेरे पास आगे के। हमारे स्कूल तो, हम तो थोड़े छोटे स्कूल से थे, तो भैया भैया कहते थे ऐसे, मतलब मॉडर्न नहीं था वो, कहते भैया आप हमारी अपनी कॉपी हमें दे दो। मैंने कहा मैं कॉपी दे तो दूंगा लेकिन आप उसको समझ नहीं पाओगे क्योंकि वो मेरे हिसाब से लिखी हुई है, आप अपनी कॉपी खुद बनाएं। तो कुछ बच्चे जो जूनियर थे कहते हैं कि यार ये तो बड़ा एरोगेंट है, कॉपी नहीं देना चाहता। मैंने कहा ले ले भाई, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने ले ले भाई, लेकिन आप अगर अपनी कॉपी खुद बना लोगे ये आपसे इतनी बात करेगी कॉपी, मैं बता रहा हूँ कि आपकी टॉप रैंक आ सकती है। बच्चा कोई भी बच्चा, ये कोई भी स्टूडेंट जो होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकता है, बहुत अच्छी रैंक ला सकता है, प्रोवाइडेड वो बेसिक्स पे चले। बेसिक्स माने मुझे समझना है, दूसरा मुझे बाद में रिवाइज करना पड़ेगा, इस बात को कभी इग्नोर नहीं करना भाई। आखिर एक बात मेरे पास कई बच्चे आते हैं कहते हैं कि सर मैं क्या मतलब मैं हैरिसन पढ़ लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जो भी करना है, क्या वो बाद में कितना कर पाएगा उस हिसाब से प्लान बना, ठीक है। तो अगर आप शुरू में हैरिसन पढ़ रहे हैं, बेली एंड लव पढ़ रहे हैं, कुछ भी क्लास कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, जो भी, आखिर में तो केवल हाथ से बनाए हुए नोट्स ही रिवाइज हो पाएंगे क्योंकि आखिर में उतना टाइम नहीं होता। चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आखिर में कितना टाइम रिवाइज करोगे, महीना, डेढ़ महीना, दो महीने, कितना, उससे ज्यादा तो करोगे तो वो भूल जाओगे। तो रिवीजन में टाइम शॉर्ट होता है, उसमें कॉपी आपके हाथ से बनाई हुई ज्यादा काम आती है और वो अंडरस्टैंडिंग का ही भाग है। मेरा ये मानना है कि एक मैं यहां थोड़ा सा और डिस्करेज भी करूंगा कि थोड़े निमोनिक बनाना बहुत अच्छी बात है, थोड़े निमोनिक बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी मेडिकल साइंस को निमोनिक समझ के एक मजाक समझ लेने में आप गलत ट्रैक पे चले जाएंगे। आपको सब वही याद रह जाएगा, शी लुक्स टू प्रेटी ट्राई टू कैच हर, लेकिन असली बात भूल जाओगे कि कौन सी बोन्स थी, कहाँ पे थी, कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। तो ये मतलब थोड़ा सा एक मतलब रियलाइजेशन, एक मैं चाहता हूँ कोई आपको जैसे ना, एक हम जैसे ट्रांस में है, हम जैसे सब भूल गए, हम एमबीबीएस में आ गए, हम जैसे भेड़ सब चल रही है वैसे चल रहे हैं, किसी को आपको खींच के, अरे भाई जाग, हमें सीखना है, हमें अच्छा डॉक्टर बनना है, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, ये जरूरत है जगाने की। एक बार आप जाग गए तो कोई नहीं हरा पाएगा। और ये भूलना नहीं है बात कि कभी कभी ना आप लोग को ऐसा लगने लग जाता है कि हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, वो स्कूल वाला माइंडसेट आ जाता है कि स्कूल में चक्कर क्या था, स्कूल में ना हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, वो बता रहे थे युगांडा में ये हो रहा है और वहां ये हो रहा है, अपने को था कि इससे अपने को क्या लेना देना। तो हम सोचते थे ये जिंदगी से इसका कोई लेना देना नहीं, हम स्कूल में जब थे हम सोचते थे कि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो अलग है, जिंदगी अलग है, मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है वो जिंदगी का बहुत बड़ा भाग बनने वाला है, इसको इग्नोर नहीं करना है। मरीज आएंगे, फिर मेरे पास कई बच्चे आते कहते सर रेयर बीमारी का हम क्यों पढ़े, भाई किसी को तो ट्रीट करनी पड़ेगी ना। भाई भाई बाय बाय स्ट्रोक ऑफ फॉर्च्यून और मिस फॉर्च्यून कोई ना कोई जेनेटिक बीमारी आपके पास एज अ पेरिफेरल, आप हॉस्पिटल में बैठे होगे तब भी तो आएगी, आपके जानने से, आपकी नॉलेज से आपकी डायग्नोस्टिक एबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी ट्रीटमेंट एबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आज के समय में मरीज इतना ट्रेवल कर रहा है, कई मरीज ऐसे होते हैं जो कभी ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आ रहा होता है, तो एक बड़ा ही एक बहुत ही पुअर मैं बोलता हूँ कि एक प्लानर्स कभी कभी ऐसा कहते हैं कि आज हम इंडिया में हमें वही बीमारियां पढ़ानी चाहिए बच्चों को जो इंडिया में हो रही है। मैं कह रहा हूँ हमें और डीप पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। कई कई आप देखोगे कई आपके ट्रेवलर्स आएंगे, रोज तो हवाई जहाज से एयरपोर्ट से हजारों लोग उतर के आ रहे हैं, कोई कौन सा वायरस लेके आ रहा है, क्या इनकी इन्फेक्शन लेके आ रहा है, आप सोच ही नहीं पाओगे। तो टू बी अ गुड डॉक्टर वी हैव टू बी वी हैव वी नीड दैट डेप्थ ऑफ नॉलेज जो आज आप एक्वायर कर रहे हैं। पॉलिटिक्स और जो दूसरी बातों को लेके कंफ्यूज ना हो, कई लोग बोलेंगे कि इतना डॉक्टर को पढ़ना नहीं चाहिए, डॉक्टर को कम पढ़ना चाहिए, वो गलत कॉन्सेप्ट है। मेडिकल साइंस डीप नॉलेज मांग रही है, ये डीप साइंस है। जब आप डीप नॉलेज रखते हो तो आपको इतना मजा आएगा कि हमारे समय पे मैं ऐसे ऐसे प्रोफेसर से हम पढ़े हैं जो बेड साइड पे मरीज के बेड से आने उसकी कोई जो उसको जो स्मेल ऑर्डर आ रहा है उसी से वो डायग्नोसिस बना लेते थे क्या हो रहा है। वो क्लिनिकल स्किल्स को हमने खोना नहीं है, वो जरूरी है। ऐसा नहीं सोचें कि रेयर बीमारी होती नहीं है, ऐसा ना सोचो कि हिस्टोप्लाज्मोसिस इंडिया में आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी मरीज को कुछ भी रह सकता है, वो जानने के लिए मुझे डीप नॉलेज चाहिए। ये एक्सेप्टेंस जो है कि मेडिकल साइंस एक कॉम्प्लेक्स साइंस है, ये डीप साइंस है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये स्कूल की तरह नहीं है, 10th क्लास नहीं है ये कि मैंने आखिरी में 10 ईयर के 5 पेपर देखे, वही क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में आ रहे थे, वही मैं पढ़ता रहा और बात बन गई। वो नहीं है, ये एक्सेप्ट होते ही सब कुछ आसान हो जाएगा।
मेहनत सच में सर बड़ी है, लगा था कि फाइनल ईयर जब खत्म हो जाएगा इंटर्नशिप आएंगी तो सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, मजे करेंगे, आराम से लाइफ कटेंगे, स्टाइपेंड आएगा, लेकिन कुछ नहीं है सर, उल्टा पढ़ाई बढ़ चुकी है। मतलब फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चे अभी यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई उनसे ज्यादा है, तो वो डिफरेंस दिख रहा है सर।
एक और
और
बात है,
ये
एक और
फाइनल
बात है विजेश, जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम एमबीबीएस खत्म करते हैं, ये एक यूनिक पॉइंट होता है। जब आप अपना नीट पीजी का एग्जाम दोगे विजेश, तो उस समय आपको 19 सब्जेक्ट्स की नॉलेज होगी। ये पॉइंट है ना, जिंदगी में दोबारा ये नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद जब आप एमडी में जाओगे, सपोज आप सर्जरी में चले गए, ऑर्थोपेडिक्स में चले गए, डर्मेटोलॉजी में चले गए, साइकेट्री में चले गए, तो आप उस सब्जेक्ट में डीप चले जाओगे। आपकी जो बाकी सिस्टम्स की नॉलेज है वो एमबीबीएस से ही बनेगी। माने कि आज भी अगर मैं एज अ रेडियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं, तो जो मुझे ट्रीटमेंट के बारे में पता है वो मेरी इंटर्नशिप की नॉलेज ही है। आप समझ रहे, जो मुझे भाई जो मुझे बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में पता है, या फिजियोलॉजी के बारे में पता है, या किसी के सर्जरी में क्या प्रोसीजर होना है, या इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखेगा, ये आखिरी
राइट
मौका है। फिर तो अपना फील्ड ही सीखोगे ना,
सर, आखिरी मौका है बराबर।
है ना?
मेरा मेडिसिन पोस्टिंग खत्म होते आ रहा था, 2 दिन बाकी थे, कल आखिरी मौका था। कल मैंने मेरा फर्स्ट इंट्यूबेशन करा, एकदम हैप्पी था मैं अकेला नाइट ड्यूटी में पोस्टेड हूँ, 8 घंटा अकेला जगा रहता हूँ रात तक, लेकिन कल मुझे इंट्यूबेशन करने मिला सर, तो आई एम वेरी हैप्पी। जैसे आपने बताया कि सबको छुट्टी मिली थी, आपको छुट्टी नहीं मिली थी, मेरे केस में वैसा ही कुछ हो रहा है, 4-5 लोगों को छुट्टी मिल रही, मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं हूँ नागपुर का, मुझे इतना दूर जाना है, कोई छुट्टी दे नहीं रहा, मांगूंगा तो गाली पड़ेगी, बट जो भी हो मुझे इंट्यूबेशन करने मिला, आई एम हैप्पी विद दैट, कि रहने का एक फायदा हुआ सर।
जब भी आप कोई प्रोसीजर करोगे ना, या आप कोई मीनिंगफुल एक्टिविटी करते हो, हमें खुशी मिलती है, ये हमें
यस सर,
समझना है। क्योंकि आज हमारे आसपास ना इंस्टेंट प्लेजर के बहुत सारे सोर्सेस हैं। ये इंस्टेंट प्लेजर के सोर्सेस किस प्रकार से हैं कि आपने एक तस्वीर इंस्टाग्राम पे डाली और किसी ने उस फोटो को लाइक किया, आपको खुशी मिलेगी। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म खुशी है और फिर गायब हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको पता है कि उसने सच में लाइक नहीं किया था, उसने क्लिक दबाया। आप समझे, थोड़ा फर्क है कि उसने मुझे लाइक किया कि मेरी फोटो को क्लिक दबाया, इसमें फर्क है। ये डोपामीन रिलीज होता है, हमें लगता है खुशी है, वो खुशी नहीं होती, वो खत्म हो जाती है, फिर हमें दोबारा चाहिए होती है, फिर हम कुछ और ऐसा एक्टिविटी करते शॉर्ट टर्म। तो कभी कभी क्या होता है, इस तरह की शॉर्ट टर्म प्लेजर, जैसे हमें प्लेजर चाहिए तो चल यार खाना ऑर्डर कर देते हैं, चल यार कैंटीन में जाके ये ले आते हैं, चल आज तो खाने के लिए भी चॉइसेस इतनी ज्यादा हो गई कि हमारे समय में हॉस्टल में जो बना है वही खाना है। आज तो स्विगी है, जोमेटो है, आप कुछ भी मंगा लो हॉस्टल में भी, तो और चॉइसेस भी बढ़ गई और डिस्काउंट्स भी बढ़ गए। तो इंस्टेंट खुशी बहुत सारी पाई जा सकती है, लेकिन जो लंबे समय में खुशी मिलती है ये टाइम टेस्टेड है। वो तब मिलती है जब आपके की हुई चीजों से, आपके काम से दूसरों पे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकें। जैसे आपने बताया आपने इंट्यूबेट किया, आपको अच्छा लगा, उसी तरह से जब आप पहली बार रिससिटेशन में, आपकी रिससिटेशन के द्वारा कोई बचेगा, वो
हाँ
खुशी
सर,
अनपैरेलल्ड होगी। आप उसको मुकाबला नहीं कर सकते पैसे से, किसी चीज से उसको तोल नहीं पाएंगे। उसी तरह से जैसे अब रेडियोलॉजिस्ट, मैं रेडियोलॉजी में जब प्रैक्टिस करता हूं, तो मैं जब कोई रेयर डायग्नोसिस बनाता हूँ, जब कोई ऐसा डायग्नोसिस बनाता हूँ जो किसी ने ना बनाया हो, तो मुझे जो खुशी मिलती है वो अनपैरेलल्ड है। या फिर जब मैं एज अ टीचर पढ़ा रहा होता हूँ, जब बच्चे मेरे पास कभी कई साल बाद कोई, जैसे आज विजेश अभी मुझे मिला, अगर यही विजेश मुझे आज से 10 साल बाद मिले और कोई हॉस्पिटल में बड़ा भाई बहुत ही बड़ा डॉक्टर बना हो, तो जो खुशी मिलती है कि नहीं यार हम कुछ मीनिंगफुल कर पाए। जो मीनिंगफुल
यस
खुशी होती है ये सॉफ्ट होती है, ये उतनी हाई नहीं देती हमें जो डोपामिन सर से मिलती है, लेकिन ये लंबे समय तक रहती है और ये आपको बताती है कि आपने अपना जीवन में, अपनी जिंदगी में जो आप मीनिंगफुल लाइफ जिसको हम कहते हैं वो आपने की। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है आज की उम्र के हिसाब से भी थोड़ा ज्यादा हो बात, लेकिन
सर,
जरूरी है।
एक एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए
जी बेटा,
सर। इंटर्नशिप की शुरुआत में ना सर सब अच्छा था, मोमेंटम अच्छा बना था, पॉजिटिविटी थी, हर चीज में एनर्जी डालता था, खुशी थी, मेंटल पीस था, मतलब दिन भर मैं मतलब मशीन जैसा पढ़ता था सर, 8 घंटा पढ़ाई करके 6-7 घंटा सो के बाकी पूरा टाइम लाइब्रेरी में कैंपिंग करता था मैं। लेकिन अभी जैसे जैसे इंटर्नशिप खत्म हो रही है, एग्जाम पास में आ रहा है, तो वो जो मेंटल पीस था सर, पता नहीं कभी सोचा भी नहीं था कि मेंटल हेल्थ भी कुछ होता है करके, लेकिन अभी अभी एंड एंड में पता चल रहा है कि भाई कुछ होता है ऊपर में जो डिस्टर्ब होता है, तो सर अब हर चीज पता है कि काम करते रहना है, हर दिन मेहनत करनी चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, सारे दिन अच्छे नहीं होंगे, सारी फिलोसफी पता है सर, सब पढ़ा है, सब पढ़ा है, लेकिन सर एट द एंड तक खुश कैसे रहे वो एग्जाम के दिन तक, जब सोचा था कि एग्जाम पास में आएगा अच्छा इंपैक्ट देंगे, लेकिन अभी शायद उल्टा हो रहा है ऐसे मुझे लग रहा है, मैं ऐसा कभी नहीं था लेकिन मैंने पहली बार ऐसा कुछ फेस करा है सर, तो उसके लिए कुछ बताइए सर।
यहाँ ना देखो, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की पिछले इतने 2 डिकेड के अंदर, जो अच्छा परफॉर्म किए, जो अच्छा नहीं परफॉर्म किए। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने एक एक उसका समरी है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। मतलब एक ऐसा, मतलब एक बफर जोन चाहिए हमें, कि जहां जैसे आज अगर आपको लगे कि यार मैं थक गया, यार मैं से नहीं हो पा रहा, तो कुछ ऐसे दोस्त यार हो जिनसे बात करके अपन रिलैक्स हो पाए, या नहीं तो मम्मी के पास चले जाए यार, बात कर ले यार। मतलब रिश्तों में मीनिंगफुल रिलेशनशिप होने से एक बफर मिल जाता है, जो हमारे को दुनिया की हार्शनेस से बचा देता है। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि जब हम इंटर्नशिप में होते हैं, या हम एज अ मेडिकल प्रोफेशन में जब हम डीप जाते हैं, हमें शुरू से बताया होता है, जो कि गलत होता है, जो मैं चाहता हूँ आज जो फर्स्ट ईयर बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए फायदे की बात है, हमें शुरू से बताते हैं कि भाई एक बार PMT निकाल लो, फिर जिंदगी सफल हो जाएगी, उसके बाद आराम है। और लेकिन हर स्टेप के बाद हम देखते हैं कि आराम नहीं है, और काम है। फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर आते हैं तो कहते हैं और काम है, सेकंड आते हैं तो फाइनल तो कहते हैं ये तो सिलेबस और बढ़ गया, इंटर्न आते तो ये सोचा था कि इंटर्न बनेंगे तो जिंदगी सफल हो जाएगी, ये तो काम और बढ़ गया। अभी विजय सोच रहा है कि एक बार PG बनूंगा तो बहुत आराम आएगा अभी काम और बढ़ जाएगा। तो असली में सक्सेस का मतलब ही ये है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज काम करने की होती है वो बढ़ जाती है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो मैं इसको थोड़ा सा एलेबरेट करना चाहता हूँ। जैसे आप अगर देखें तो जो फिल्म स्टार होते हैं, जैसे शाहरुख खान है फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ शाहरुख खान। आप कहते हो शाहरुख खान यार बहुत ही सक्सेसफुल आदमी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा वो क्या करता है पूरा दिन? वो पूरा दिन काम करता होगा, पूरा दिन काम करता होगा, क्योंकि उसका कभी एक पिक्चर का शूटिंग होगा, कभी कुछ काम होगा, कभी कुछ हो करना पड़ेगा, और रिपीटेटिव काम करना पड़ेगा। तो जब हम पीक पे पहुंचते हैं, जब हम लेवल हमारा ऊपर होता जाता है, हमें एफर्ट भी बढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमें उस एफर्ट उस लेवल को मेंटेन करना है। उसी तरह डॉक्टर में भी, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जैसे अब अगर मैं जैसे जिस स्टेज पे जिंदगी में आ गया हूँ, अब क्या होता है, आप तो सोचेंगे कि डॉक्टर सुमेर को तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, अब तो ये 20 साल हो गए रेडियोलॉजी करते हुए, इन्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम एक लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां लोग नाम जान रहे होते हैं, तो कई ना बहुत दूर से कोई अपना MRI की रिपोर्ट लेके आ जाता है कि डॉक्टर सुमेर आपको दिखाना है। अब वो उसने मुझे MRI दिया, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो ऐसी डायग्नोसिस हो, ऐसी रेयर बात हो जो मेरे को उतनी नॉलेज उसकी ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इसको पढ़ूंगा। मैं उसको बैठ के पढ़ता हूँ, और मैं हर दिन पढ़ता हूँ। तो उसको पढ़ के समझ के मैं उसके ऊपर डीप आंसर देता हूँ उसमें। वो मतलब आप सोचो, इसको विजुलाइज करना है आपने अपने लिए भी, कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, क्योंकि मुझे आई हैव अ रेपुटेशन टू कीप। अब मैं गलती नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं तो बोलेगा यार मैं डॉक्टर सुमेर के पास आया फिर भी गलत हो गया। अब मैं गलती नहीं कर सकता, मुझे एफर्ट ज्यादा मारना पड़ेगा। मैं जब थर्ड ईयर था, सेकंड ईयर था, MBBS था, तो मेरे पास मौका था, गलती कर देता, कोई कुछ कहता नहीं कि MBBS स्टूडेंट हूं। लेकिन अब जब मैं डॉक्टर सुमेर सेठी हूं, मैं गलती करूंगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो आपके लिए भी होगा। जब आज आप डॉक्टर विजेश इंटर्न है, आपकी गलती एक्सेप्टेबल है, लेकिन जब डॉक्टर विजेश तिगाड़े अपने सीनियर कंसल्टेंट होंगे, तो गलती एक्सेप्टेबल नहीं होती, क्योंकि फिर वो लगता नहीं ना, मैं इस डॉक्टर के पास आया जो 10 साल से काम कर रहा है, 15 साल से काम कर रहा है, ये कैसे गलती कर सकता है। तो हमारा एफर्ट बढ़ाना पड़ता है। मेरा विजुअलाइजेशन इसका ऐसे है कि जैसे हम हवाई जहाज को जब टेक ऑफ कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत एनर्जी बर्न कर रहा होता है हवाई जहाज। जब हम एक लेवल पे पहुंचते हैं, तो कोई इंजन बंद थोड़ी कर देते हैं, क्या पायलट टॉप पे पहुंच के इंजन बंद कर देता है? नहीं भाई, ऊपर बने रहने के लिए एनर्जी और खर्चनी पड़ती है, वही आपने भी जानना है। तो यही एक मतलब सच ये है कि वी हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरी, एक बफर जोन इंपॉर्टेंट है। ये बफर जोन में आपने देना भी है, गिव एंड टेक है। ये बच्चे कई बार नहीं समझ पाते। कई बार स्टूडेंट आते हैं कहते सर मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे दोस्त मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। तो रिश्ते गिव एंड टेक है, आप जहां पे गिव करेंगे तो आपको मिलेगा भी। मेरा ये मानना है कि आप दोस्तों के साथ खड़े होंगे तो दोस्त आपके साथ भी खड़े होंगे, आपने तो किसी का साथ नहीं दिया, लेकिन आप अब एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई सब मेरे साथ आके आएंगे, तो ऐसा हो, मतलब तो गिव एंड टेक है रिश्तों में भी, तो थोड़ा सा मीनिंगफुल रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे जहां आप भी दिल से उनके साथ खड़ा होना चाहें और वो भी आपके साथ खड़ा होना चाहें। बहुत ज्यादा दोस्त हैं लेकिन सच में कोई नहीं है, ऐसा इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे हो सकता है आपके साथ। ये मैं बहुत
हाँ
सारा देखता हूँ, इसको डिजिटल लोनलीनेस भी बताया गया है कि
हाँ
डिजिटली प्लेथोरा बट एक्चुअली
हाँ
नोबडी। सो ये हो सकता है, तो जरूरत है कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप को बनाएं, उनको इज्जत दें और उनको गिव करें वापस। क्योंकि अगर ऐसे दोस्त हैं आपके जो आप जब आप परेशान हैं, जैसे विजेश अगर परेशान है, तो अगर ऐसा कोई दोस्त है या लड़का है लड़की है जो भी है, जिसको वो फोन कर सके और दिल की बात कर सके, तो गिव भी करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं इज्जत देनी पड़ेगी रिश्तों को, मेरा ये मानना है। इज्जत तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए। द डे वी लूज दिस बफर, वहां पे गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिंदगी तो हार्श है, हार्श है, जिंदगी में स्ट्रगल भी आएगी, जिंदगी में परेशानी भी आएगी, और बहुत कई बार ऐसी सिचुएशन भी आएगी जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे आपने देखा हो विजेश, एग्जाम की डेट के लिए पिछले साल, एग्जाम की डेट के लिए पिछले साल आपने देखा होगा
हाँ, पिछले
कभी
साल
पोस्ट
कितना एक्सपीरियंस हुआ, 2 साल।
तो वो अपने कंट्रोल में भी नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि बात अपने कंट्रोल में ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते उस बारे में। कोई डेट पोस्टपोन हो रही है, कोई प्रीपोन हो रही है, कभी इंटर्नशिप की वैलिडिटी आ रही है, नहीं आ रही है, मतलब तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मेरे पास अच्छा बफर जोन होगा और एक स्ट्रांग वाई होगा जिंदगी में, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा।
राइट सर, लिख लिया सर, मैं याद रखूंगा ये। सर, और एक लास्ट चीज बताना चाहूंगा। मेरे क्वेश्चंस तो हो गए सर। एक मतलब जैसे मैंने सेकंड ईयर में मेरे कॉलेज में किसी ने कोचिंग ज्वाइन नहीं करा था, तब हम गिने चुने 2-3 बच्चे थे जिन्होंने डायमंड ज्वाइन करा था सैटेलाइट क्लास में। तो सैटेलाइट चालू करा और तब से मेरा ये एक्सपीरियंस था कि जितना जल्दी प्रिपरेशन चालू करा उतना वो जल्दी खत्म भी होता है, अच्छे से भी होता है, उसके ऊपर 4-5 रीडिंग भी हो जाती है। जैसे अभी रेडियो, मैंने अभी हफ्ते भर पहले रेडियो पढ़ा, तो मैं ऐसे दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा था, तो किसी ने मुझे ऐसे दूर के दोस्त ने बताया कि तूने 7 दिन पहले पढ़ा है, तो अभी उसको एक बार रिवाइज कर ले फास्ट में, 2-3 घंटों में पूरा रेडियो। अब मेरी उसमें चौथे या पांचवे रीड होंगे रेडियो पे, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। मेरे बैच में शायद सारे एवरेज बच्चों में अच्छा रेडियो मुझे ही आता है, क्योंकि मैंने 3rd ईयर से पढ़ा था। तो ये एक मेरा फायदा हुआ कि मैंने जल्दी शुरू किया, अच्छा समझा, और अभी भी ICU में मैं रोज जितने भी एक्सरे देखता हूँ, कई सारे एक्सरे में मेरे ब्लॉग पे डालता हूँ, बहुत सारे एरो एरो बना के डिटेल डिस्क्रिप्शन दे के, तो दैट इज एक बहुत फायदा हुआ। और आई होप अच्छे मार्क्स मिले रेडियो लेने, मुझे अच्छा लगता है सर बहुत।
कौन सी ब्रांच लेना चाहता है आगे जाकर?
सर 4-5 ऑप्शन है, रेडियो सबसे अच्छा लगता है, देखूंगा। सर्जरी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मजा आता है सर्जरी करने में। जैसे आपने एनएट की बात बताई, मैं एनएट डिसेक्शन हॉल में 3 ग्लव्स एक्स्ट्रा लेके जाता था, सो दैट किसी बच्चे का मूड नहीं होगा तो मैं उसके हिसाब से कर लूंगा करके। से मैं मेरा एनएट में बहुत इंटरेस्ट है। सर्जरी अच्छा लगता है सर, मेडिसिन अच्छा लगता है, ऑर्थो भी अच्छा लगता है, पीडिया भी अच्छा लगता है, एनेस्थेशिया भी। तो अभी तक कुछ डिसाइड नहीं करा, अच्छे मार्क्स मिले तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर रेडियो, ये तो मेडिसिन सर्जरी भी इज गुड, मैं खुश रहूंगा सर उसमें। जी सर,
बिल्कुल। और इसमें ना मेरा एक ये भी सजेशन है, जैसे जब हम इंटर्नशिप में जा रहे हैं, इंटर्नशिप एक ऐसा मौका है जहां पे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जब जाते हैं, तो वहां ऐसे सोचो कि कल अगर मैं यहाँ हूँ, ये मेरी जिंदगी हो, तो डू आई बिलोंग हियर। कई बार क्या होता है, मैंने ऐसा देखा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका माइंडसेट होता है कि हमें मेडिसिन करनी है, सर्जरी करनी है, लेकिन इंटर्नशिप में वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाके उन्हें लगता है यार मैं तो यहाँ बिलोंग करता हूँ। जैसे मैंने आपने बोला ना कि मैं 4-5 सब्जेक्ट्स में से चुनूंगा, तो कई बार क्या होता है, इंटर्नशिप इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कई बार वहां जाके पता चलता है कि मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ। इसी तरह से वेस्टर्न कंट्री में, अमेरिका में बच्चे क्लिनिकल रोटेशंस करते हैं, तो रोटेशंस में जाके उन्हें समझ आता है कि मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि आप आज आप 5 सब्जेक्ट्स में सोच रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे केवल मार्क्स ही डिसाइड नहीं करेंगे, अगर मार्क्स बहुत अच्छे आ गए तो आप डिसाइड करोगे। तो ये पता करने के लिए भी इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट है कि मेरे मुझे क्या चाहिए असली में।
ICU में तो सर मैं मेरा USG मशीन लेके घूमता रहता हूँ कि किसका IVC स्कैन करना, लाओ मैं कर देता हूँ।
बहुत बढ़िया। एंड इस नोट पे आई थिंक विजेश बहुत ही
सर
मजा आया बात करके। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे, और
यू सर।
इसी तरह से पॉजिटिव रहना है जिंदगी में, एनर्जी क्रिएट करनी। आप देखोगे एक कमरे में अगर 5 लोग होंगे तो कई बार उन 5 में से एक ही आदमी ऐसा होगा जो पूरी एनर्जी ला रहा है उस गेम के अंदर। आपने वो बनना है, आपने
यस सर।
जो एनर्जी आप लाएंगे, जो आप, क्योंकि जब आप एफर्ट लगाते हैं आप एनर्जी लाते हैं, वो एनर्जी पेशेंट्स की लाइफ को भी टच करेगी, आपके कुलीग्स की लाइफ को भी टच करती है, आपके परिवार की लाइफ को भी टच करती है। एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, आपने एक पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स बनना है, जैसा आप अभी तक करते भी हैं, आगे भी ऐसा ही करना है बेटा। बेस्ट ऑफ लक,
थैंक यू सो मच सर। थैंक यू
बाय बेटा।
जी सर। गुड नाइट।